प्रिय श्रोता नमस्कार, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको अपने जीवन में आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हो रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से सबोपदेशक नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं, और हमें विश्वास है श्रोताओं कि इस पुस्तक के अध्ययन के द्वारा आपको निश्चय ही प्रेरणा मिल रही होगी। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
वंदे प्रभु, वंदे मसीह, शत शत वंदना, वंदे प्रभु, वंदे प्रभु,
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, और विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से सबोपदेशक नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, और इस पुस्तक के लेखक सुलेमान हमें इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि मनुष्य इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने जीवन में संतुष्टि की कोशिश करता है, पाने की खोज करता है, परंतु वह संतुष्ट नहीं होता। इसने अपने अनुभव को हम तक पहुंचाया है, इसी विषय पर हम देख रहे हैं। तो आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, और इससे पहले कि हम अध्ययन में जाएं, प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके वचन का अध्ययन करें। आज जब हम फिर से आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि आज जो कुछ भी हम सुनते और सीखते हैं निश्चित रूप से हम में से प्रत्येक के जीवन के लिए लाभ का कारण बन सके। आज की इस अध्ययन को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आप मेरे साथ सबोपदेशक की पुस्तक 10 अध्याय उसके 10 पद को निकाल लीजिए। सबोपदेशक की पुस्तक 10 अध्याय उसके 10 पद में इस प्रकार से लिखा है, यदि कुल्हाड़ा थोथा हो और मनुष्य उसकी धार को पैनी न करे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा, परंतु सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ होता है। ध्यान दीजिए, यदि कुल्हाड़ा थोथा अर्थात बोथर हो जाए तो आप उसमें धार लगाते हैं। बोथर कुल्हाड़ी के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। अधिकांश मनुष्य कुल्हाड़े पर धार नहीं लगाते हैं, और उसी प्रकार थोथा और बोथर कुल्हाड़े को उपयोग में लेते हैं। एक दिन मुझे एक युवक ने कहा कि परमेश्वर ने उसे प्रचार करने के लिए बुलाया है। वह लघुकालीन बाइबल शिक्षा पाना चाहता था, तो मैंने उससे कहा कि हे युवक, अपने कुल्हाड़े पर धार लगाओ, बिना किसी प्रशिक्षण प्राप्त किए प्रचार के लिए मत निकलो, धार लगाने का समय निकाल लो। थोथा कुल्हाड़ा लेकर बहुत वृक्ष काटने की आशा मत करो, यह मूर्खता है। कुल्हाड़े पर धार लगाकर बाहर ही निकलो। सबोपदेशक में हमारे लिए कुछ अति उत्तम शिक्षाएं हैं। यह पुस्तक एक असामान्य पुस्तक है। मेरे मित्रों, हम देख रहे हैं कि जीवन में अन्याय के कारण मनुष्य कोई बीच का रास्ता चुनता है, मध्य मार्ग का चुनाव करता है। पहले परिस्थिति कुछ और थी, आज कुछ और है। आचार संबंधित मूल्यों में भी कुछ परिवर्तन आ गया है। ऐसे समय में मनुष्य को क्या करना है? आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे सबोपदेशक 10 अध्याय उसके 11 पद में। यदि मंत्र से पहले सर्प डसे तो मंत्र पढ़ने वाले को कुछ लाभ नहीं। इस पद को समझने के लिए हमें इसराइल के अभ्यासों को समझना होगा। यह भजन संहिता 58 उसके 4 और 5 पद के सदृश है। उनमें सर्प का सा विष है, वे उस नगर के समान हैं जो सुनना नहीं चाहता, और सपेरा कितनी भी निपुणता से मंत्र ना पढ़े तो भी उसकी नहीं सुनता। यिर्मयाह में भी यही विचार प्रकट है। यिर्मयाह की पुस्तक 8 अध्याय उसके 17 पद में, मैं तुम्हारे बीच में ऐसे सांप और नाग भेजूंगा जिन पर मंत्र न चलेगा और वे तुमको डसेंगे। भजन संहिता में जिस सांप के लिए नाग शब्द काम में लिया गया था, वह वास्तव में एडर नाम का सांप है और उसका विष अत्यधिक प्राण घातक होता है। हम अपने देश में सपेरों को सांप लेकर घूमते हुए देखते हैं। वे बीन बजाते हैं और सांप मस्त हो जाते हैं। उनके विचार में बीन की राग सुनकर सांप काटेगा नहीं। अब यदि मेरे सामने सांप आ जाए और मेरे पास बीन हो तो मैं बजाता ही चला जाऊंगा, परंतु एक समय ऐसा आएगा कि सांप ही काट लेगा और सांप काटने का अर्थ है मृत्यु। मेरे विचार में यहां सांप का अर्थ है विश्वासघाती, जैसे यहूदा इस्करियोती। ख्रिस्त विरोधी भी महाक्लेश में इसराइल के लिए एक सांप जैसा ही होगा। मेरे प्रियो, कलीसिया के सदस्यों के मध्य भी आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो असत्य बातें कहते हैं। यदि मंत्र से पहले सर्प डसे तो मंत्र पढ़ने वाले को कुछ भी लाभ नहीं। विश्वासघाती आपके साथ मित्रता का स्वांग रचेगा, परंतु एक दिन डस लेगा, चाहे आप उसके साथ कितनी भी भलाई क्यों ना करें। दाऊद का परम मित्र अहितोपेल जब उसका साथ छोड़कर अब्सलोम के साथ हो गया था, तब दाऊद का दिल टूट गया और उसे बहुत अधिक दुख हुआ था। मेरे विचार में अब्सलोम के विद्रोह के बाद दाऊद टूट गया था। इस समय तक मेरे विचार में दाऊद जैसा कोई राजा नहीं हुआ था, विशेष करके उसकी युवावस्था में। अब्सलोम के विद्रोह के बाद दाऊद बूढ़ा हो गया था और वह भजन 55 में वह अपना दिल खोलकर रख देता है और हम यह चित्रण को देखते हैं। सुलेमान कहता है कि ऐसी दुर्घटना की संभावना में हमें अत्यधिक सावधान रहना है। मैं कहना चाहता हूं कि यह आज एक औसत मनुष्य का सिद्धांत है। वह सदाचारी है जो मार्ग के मध्य में चलता है। उसे सतर्क किया गया है कि किससे सावधान रहे, क्योंकि वह अपनी बात को बदल देगा। अतः जब श्री सदाचारी इन लोगों का सामना करता है, तब वह उनके प्रति अति मधुर स्वभाव प्रकट करता है, परंतु शब्दों को काम में लेते समय वह अति सावधान रहता है। मेरे प्रियो, हम कभी कभी सोचते हैं कि हम ऐसे मनुष्यों को जो सच्चाई को विकृत करते हैं उन्हें बताएं कि वे जो कर रहे हैं वह अच्छा नहीं है, परंतु मेरा अनुभव यह है कि यदि आपने उन पर उंगली उठाई तो आप पर अत्यधिक विषैला आक्रमण किया जाएगा। क्योंकि उन्हें पता है कि वे क्या कर रहे हैं। सबोपदेशक की पुस्तक 10 अध्याय उसके 12 पद में हम पढ़ते हैं, बुद्धिमान के वचनों के कारण अनुग्रह होता है, परंतु मूर्ख अपने वचनों के द्वारा नष्ट होते हैं। मूर्ख अपने वचनों के द्वारा नष्ट होता है और वे जो उसके साथ हैं वे भी। यही कारण है कि मित्र बनाने में सावधानी की जाए। मित्रों का चयन सावधानी पूर्वक करना चाहिए। जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था तब मैंने नए आने वाले विद्यार्थियों को सदा एक ही बात कही, यहां आप मित्र बनाएंगे जो सारा जीवन आपके मित्र होंगे। आपको यहां अपना जीवन साथी भी मिलेगा और कुछ को मिला भी। अतः मित्र बनाने में अति सावधान रहें। कुछ लोग गलत मित्र का चुनाव करते हैं और इसके कारण उनके जीवन में परेशानियां आ जाती हैं। मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि उनकी बेटी जब कॉलेज में गई तब उसने उसे भी यही सलाह दिया। मैंने उससे कहा कि उसे अपने जीवन का सबसे महान अवसर प्राप्त होगा कि वह मित्र बनाए, परंतु बनाने में उसे अत्यधिक सावधान रहना है। कुछ लोग आपको नाश करने का प्रयास भी करेंगे। कुछ लोग सांप के समान होते हैं। यदि आप उन्हें प्रसन्न करें तो वे आपके साथ अच्छे रहेंगे, परंतु उनके साथ व्यवहार करने में अति सावधान रहें। यह एक अच्छा परामर्श है मेरे प्रियो, परंतु यह मध्यम वर्ग है। कहने का मतलब है कि यह बीच का रास्ता है। सबोपदेशक की पुस्तक 10 अध्याय उसके 13 और 14 पद में हम पढ़ते हैं, उसकी बात का आरंभ मूर्खता का और उनका अंत दुखदायी बावलापन होता है। मूर्ख बहुत बातें बढ़ाकर बोलता है तो भी कोई मनुष्य नहीं जानता कि क्या होगा, और कौन बता सकता है कि उसके बाद क्या होने वाला है। यह सच है। आपने देखा होगा कि सामूहिक वाद विवाद में एक दो ऐसे मनुष्य होते हैं जो बातूनी होते हैं। वे बहुत अधिक बोलते हैं, परंतु उनकी बातें अधिकतर मूर्खता की ही होती हैं। और अन्य सदस्य यही आशा करते हैं कि वे चुप रहें तो अच्छा होगा। इसी कारण मैं ऐसे वाद विवाद सत्र के पक्ष में नहीं रहता हूं। मैं आम तौर पर प्रश्न लिखकर मांगता हूं, अन्यथा कोई न कोई बकवादी व्यक्ति समस्या खड़ी कर देता है। ऐसों को कहा जाता है उनका मस्तिष्क मुंह चलवाता है और फिर शांत हो जाता है। सबोपदेशक 10 अध्याय के 15 पद में लिखा है, मूर्ख को परिश्रम से थकावट ही होती है, यहां तक कि वह नहीं जानता कि नगर। आज हम कहते हैं मूर्ख नहीं जानता कि वर्षा से कैसे बचें। सबोपदेशक 10 अध्याय के 16 पद में लिखा है, हे देश तुझ पर हाय, जब तेरा राजा लड़का है और तेरे हाकिम प्रातः काल भोज करते हैं। वे अपनी प्रजा का उचित प्रशासन करने और देश के लिए आशीष होने की अपेक्षा भोग विलास में लीन रहते हैं, और यही कारण है कि उसकी प्रजा भी नाश हो जाती है। सबोपदेशक 10 अध्याय के 17 पद में लिखा है, हे देश तू धन्य है जब तेरा राजा कुलीन है और तेरे हाकिम समय पर भोज करते हैं, और वह भी मतवाले होने को नहीं वरन बल बढ़ाने के लिए। हमारे देश की एक बड़ी समस्या है शराब पीना। आज हमारे देश में लाखों शराबी हैं। यह चेतावनी का विषय है, हे देश तू धन्य है जब तेरा राजा कुलीन है और तेरे हाकिम समय पर भोजन करते हैं, और वह भी मतवाले होने को नहीं वरन बल बढ़ाने को। सबोपदेशक 10 अध्याय के 18 पद में लिखा है, आलस्य के कारण छत की कड़ियां दब जाती हैं और हाथों की सुस्ती से घर चूता है। यह आलस का दोष है, काम करने से इनकार। आज यह हमारे देश का अभ्यास बनता जा रहा है। आज का आम अभिवादन है आराम से, जैसे लोग कहते हैं नमस्कार। आज लोग कहना चाहते हैं आराम से और शुभ दिन, अर्थात काम कम मस्ती अधिक। आगे हम पढ़ते हैं सबोपदेशक 10 अध्याय के 19 पद में, भोज हंसी खुशी के लिए किया जाता है और दाख मधु से जीवन को आनंद मिलता है और रुपयों से सब कुछ प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, अधिकांश धनवान मध्य मार्ग में हैं। वे मुक्त विचारक और रूढ़िवादी एक साथ होना चाहते हैं, बीच का रास्ता निकाल करके जीवन जीना चाहते हैं। तब हम देखते हैं सबोपदेशक 10 अध्याय उसके 20 पद में लिखा है, राजा को मन में भी शाप न देना, न धनवान को अपने शयन की कोठरी में शाप देना, क्योंकि कोई आकाश का पक्षी तेरी वाणी को ले जाएगा और कोई उड़ने वाला जंतु उस बात को प्रकट कर देगा। राजा को मन में भी शाप न देना। मेरे विचार में शासकों का व्यंग चित्र बनाना उचित नहीं है। पहला पत्रस की पत्री 2 अध्याय उसके 17 पद में पत्रस कलीसिया को आदेश देता है कि राजा का सम्मान करे। जी हाँ, यह हर एक मनुष्य के लिए उचित है कि अपने अधिकारी का सम्मान करे। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज अध्याय 10 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 11 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। यह अध्याय सदाचारी को एक अति उत्तम वरन सर्वोत्तम मार्ग सुझाता है, क्योंकि वह एक जन स्वीकार्य जीवन जीना चाहता है और मध्य मार्ग में रहना चाहता है, न गर्म न ठंडा, न दाहिने न बाएं। तो आइए आप मेरे साथ पढ़िए सबोपदेशक 11 अध्याय उसका 1 पद, अपने रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। ध्यान दीजिए, भलाई करने से मत डरो, चाहे प्रतिफल प्रति में विलंब हो। कहने का मतलब है कि प्रतिफल प्राप्त करने में देरी हो जाए, फिर भी आप भलाई करने से पीछे न हटे। सबोपदेशक 11 उसके 2 पद में लिखा है, 7 वरन 8 जनों को भी भाग दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर क्या विपत्ति आ पड़ेगी। भलाई करते समय सुनिश्चित करें कि एक की ही नहीं अन्यों की भी भलाई करें, अनेकों की सेवा करें, क्योंकि यदि आप कष्टों से घिरे तो आपके लिए भी अनेक जन खड़े हो जाएंगे। लुकार्ची सुसमाचार 16 अध्याय में प्रभु यीशु ने इसी संदर्भ में एक दृष्टांत सुनाया था। एक दुष्ट कर्मचारी को उसके स्वामी ने नौकरी से निकाल दिया था, परंतु उसने स्वामी के देनदारों से भलाई करने की मित्रता की, इसलिए बेरोजगारी में वे उसके साथ खड़े हुए थे। सबोपदेशक 11 अध्याय के 3 पद में हम पढ़ते हैं, यदि बादल जल भरे हैं तब उसको भूमि पर उंडेल देते हैं, और वृक्ष चाहे दक्षिण की ओर गिरे या उत्तर की ओर, तो भी जिस स्थान पर वृक्ष गिरेगा वहीं पड़ा रहेगा। वर्षा की शंका हो तो छाता अवश्य साथ में रखें। पेड़ गिर जाता है तो उसे कठिनाई से हटाया जाता है। उसके कहने का अर्थ क्या है? किसी भी काम को करने से पूर्व सोच विचार करके ही काम करना, अर्थात योजना बना लें, क्योंकि काम आरंभ हो जाने पर उसमें बदलाव लाना कठिन होगा। सबोपदेशक 11 अध्याय के 4 पद में लिखा है, जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने ना पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वह लौने ना पाएगा। अर्थात काम कैसा भी हो बुद्धिमानी से करें, बीज बोते समय वायु थमने की प्रतीक्षा करें, कटनी के समय वर्षा की संभावना होती है तो कृषक फसल नहीं काटता है। सबोपदेशक 11 अध्याय उसके 5 पद में हम पढ़ते हैं, जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती हैं, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता जो सब कुछ करता है। मेरे प्रियो, भ्रूण रचना और बच्चे का जन्म एक रहस्य है, नया जन्म और भी बड़ा रहस्य है। आप नहीं जानते कि आत्मा कैसे विचरण करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु का कथन व्यक्त है, 3 अध्याय उसके 8 पद में, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तो उसका शब्द सुनता है और नहीं जानता कि वह कहां से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। बहुत सी बातें हैं जो हम नहीं जानते हैं। मेरे विचार में उसके कहने का अर्थ है कि जो आप नहीं जानते उसका प्रभाव जो आप जानते हैं उस पर ना पड़े। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। कुर्सी पर बैठना सब जानते हैं। मेरे अध्ययन कक्ष में एक कुर्सी रखी है, उस पर बैठने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, परंतु उस कुर्सी के बारे में मैं बहुत सी बातें नहीं जानता हूँ। उसकी रचना के बारे में मैं बहुत सी बातें नहीं जानता, उसे किसने बनाया और कैसे बनाया, परंतु मैं यह अवश्य जानता हूँ कि मैं उसमें बैठ सकता हूँ और वह मेरा बोझ उठा लेगी। मुझे बस इतना ही जानने की आवश्यकता है। मैं जितना जानता हूँ उसे मैं जो नहीं जानता उसके कारण परेशानी का कारण नहीं बना सकता। जी हाँ, यही सत्य है। सबोपदेशक 11 अध्याय उसके 7 और 8 पद में हम पढ़ते हैं, उजियाला मन भावना होता है और धूप के देखने से आंखों को सुख मिलती है। यदि मनुष्य बहुत वर्ष जीवित रहे तो उन सबों में आनंदित रहे, परंतु यह स्मरण रखे कि अंधियारे के दिन भी बहुत होंगे, जो कुछ होता है वह व्यर्थ है। एक दिन आप बूढ़े हो जाएंगे। मेरे प्रियो, आप वरिष्ठ नागरिकों का जीवन उतना सुखमय नहीं देखते हैं जितना विज्ञापनों में हमें दिखाया जाता है। सबोपदेशक 11 अध्याय उसके 9 और 10 में आगे पढ़ते हैं, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अपने मन से खेद और अपने देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। मेरे मित्रों, युवाओं, स्मरण रखो कि यही समय है कि जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको निर्णय लेना होगा। आज आप उचित निर्णय ले लें तो अच्छा होगा। युवावस्था में अनुचित निर्णय लेने के कारण अनेकों का जीवन व्यर्थ हो गया है। यदि आपके जवानी के दिन उचित जीवन निर्वाह में नहीं है तो आपकी जवानी व्यर्थ है। हमारा जीवन परमेश्वर का वरदान है। एक एक दिन, एक एक पल आपका जीवन एक अनमोल वरदान है जिसे परमेश्वर की महिमा के लिए काम में लेना है। मनुष्य का मुख्य अंत क्या है? मनुष्य के जीवन का मुख्य अंत परमेश्वर का महिमान्वयन करना और सदा उसके साथ आनंद में सहभागी होना है। आज हमारे कई जवान भाई बहन इसको नहीं समझ पाते हैं और इस कारण से वे बुराइयों में फंसते चले जाते हैं। आज आप निर्णय लें कि आप किस प्रकार का जीवन जीना चाहते हैं। मेरे मित्रों, हम इस पुस्तक में देख रहे हैं कि सुलेमान ही एक ऐसा मनुष्य था जो जीवन के इन विभिन्न क्षेत्रों में परमेश्वर के बिना जीवन में संतोष और नाना प्रकार के प्रश्नों के उत्तर खोजने में प्रयोग करके निष्कर्ष खोजने योग्य था। संपूर्ण सबोपदेशक में मुख्य अभिव्यक्ति है धरती पर, अर्थात सूर्य के नीचे। उसने सबसे पहले विज्ञान प्रकृति का अध्ययन किया। आज भी अनेक मनुष्य यही सोचते हैं कि वे प्रकृति द्वारा समस्याओं का उत्तर खोज पाएंगे। कुछ देशों में तो लोग नगरों को त्याग कर बाहरी क्षेत्रों में बसने का प्रयास कर रहे हैं, पहाड़ों में या नदियों के किनारे, शहर की हलचल से दूर प्रकृति में वास करें। इसमें सुलेमान की समस्या का समाधान नहीं निकला, इससे हमारी भी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। अतः सुलेमान ने ज्ञान और दर्शन शास्त्र का प्रयोग किया। उसने भोग विलास और लौकिक आनंद में जीवन निर्वाह करके भी देखा। उसने भाग्य पर निर्भर करके देखा। उसने पूर्ण स्वार्थ का जीवन भी जीकर देखा। उसने धर्म के काम करके भी देखा तो पाया कि वे केवल रिक्त स्थानों की पूर्तियां हैं, उनमें सत्यता नहीं है। उसने सोचा कि बहुत धन की प्राप्ति से शायद संतोष मिले, परंतु सब व्यर्थ था। फिर उसने सोचा कि सदाचारी जीवन शायद मन में संतोष उत्पन्न करे, परंतु उसने यह भी देखा कि यह भी निरस्ता का ही जीवन है। मेरे विचार में आज युवा वर्ग के विद्रोह का कारण भी यही है। अब सुलेमान अपने अंतिम निष्कर्ष पर आता है जो इस अध्याय में दिया गया है। बुढ़ापे का चित्रण एक कविता है। जी हाँ, इस अध्याय में युवाओं और वृद्धों के लिए निर्देश है। जीवन के दोनों पहलू यहाँ आकर के मिलते हैं। मेरे प्रियो, अब 11 अध्याय समाप्त होता है और अध्याय 12 के एक पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। सूर्य के नीचे धरती पर मनुष्य के मन को संतोष नहीं है। इसी के आधार पर सुलेमान अब कहता है कि परमेश्वर के पास लौट आओ, अपनी युवावस्था में ही परमेश्वर के लिए एक सही निर्णय ले लो। इसका कारण यहाँ स्पष्ट हो जाएगा। सुलेमान बुढ़ापे का चित्रण प्रस्तुत करता है। यह चित्रण अच्छा नहीं लगता है, परंतु यह आपके और मेरे जीवन की सत्यता है। मैंने अपना पहला उपदेश इसी अध्याय पर तैयार किया था। उस समय मैं जवान था और अभी भी शायद मैं जवान ही हूँ, ऐसा मैं सोचता हूँ। क्या वास्तव में ऐसा ही होगा? आज मैं इस अवस्था में हूँ कि इस वर्णन की प्राथमिकता की गवाही दे सकता हूँ। मेरे प्रियो, आपने किसी न किसी को यह कहते हुए सुना होगा, मैं आज और यहीं के धर्म में विश्वास करता हूँ, आने वाले में नहीं। उनके लिए आज का धर्म यहाँ व्यक्त है। इसका अर्थ है परमेश्वर के साथ सही संबंध बनाएं और उसके लिए जिएं। क्यों? इसके लिए यहाँ दिए गए विवरण पर ध्यान दें। यह एक हृदय विदारक चित्रण है। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि सुलेमान अपने जीवन के उन सारे प्रयोगों के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जवान अपने जवानी के समय में अपने सृजनहार को ग्रहण कर ले, जान ले, ताकि उस बुढ़ापे के समय उस आशीष को प्राप्त करने पाए। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबको मदद करे एवं बहुताय से आशीषित करे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, नजर आता है मुझे मसीह, नजर आता है मुझे मसीह, सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू। सारे संतों के बीच